महाभगन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरक्षिशे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते केशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवयुतिनाम्ने अतिमत्तचरित्राय स्वाधितानञ्च कालिने जीवदुःखे सदा कायमाते। तत्कथाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर हम लोगों के गुरु महाराज जी का विरह तिथि मनाया गया। सवेरे भी बहुत सुंदर उसमें गुरु महाराज जी का थोड़ा सा चरित्र हमने सुनाया। अभी दोपहर में भी ब्रजमंडल के बहुत से संत साधु लोग पधारे और गुरु जी की महिमा का वर्णन किया। कुछ गुरु तत्व के संबंध में भी उपदेश उन लोगों ने दिया। अभी हम लोग उनके जीवन चरित्र के प्रधान प्रधान वैशिष्ट्यों के ऊपर में कुछ वर्णन करेंगे। हमारे गुरु महाराज जी का जो बचपन का चरित्र है बहुत ही सुंदर विचार है। एक जमींदार फैमिली में ईस्ट बंगाल जसौर जिले में बरिशाल जिले में बनारीपाड़ा नाम का एक प्रसिद्ध जनपद है। उस समय बंगाल में जितने बड़े बड़े नेता हो गए हैं, बड़े बड़े विद्वान, सब ईस्ट बंगाल, और वो लोग बड़े भक्तिमान, बड़े बुद्धिमान विद्वान, संगीत कला के अत्यंत उत्तम कलाकार, गुरु महाराज जी वहीं बनारीपाड़ा में एक जमींदार फैमिली में उनका जन्म हुआ। इतने सुंदर थे और कोमल शरीर था, गौर वर्ण जोनाकी पोका जैसा होता है, जोनाकी पोका मैंने जुगनू जुग 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 जो करता है। उनकी मैया और सब ग्राम की महिलाओं ने मिलकर उनका नाम जोनाकी रख दिया।
जोना नाम रख
इतने सुंदर। वो करीब करीब 3-4 महीना तक या कितने महीने तक न रोते थे, न बातचीत करते थे, न कुछ नहीं। लोगों के परिवार में के लोगों को बड़ी चिंता थी, ये बोलता क्यों नहीं? भरत महाराज जी बहुत दिनों तक नहीं बोला था, ये भी कुछ बोलते नहीं थे। पिताजी उनके बंगाल के प्रसिद्ध संत जल, ये खटर खटर कर रहा है, छुअ टुअ मतम छुअ, प्रसिद्ध संत क्या नाम, बड़े भारी योगी थे, दाढ़ी थी, योगी पुरुष,
नाम
विद्यासागर के समय में बहुत नामी यशस्वी योगी थे, अरविंद पुस्तक में लिखा है। वो ऐसे योगी थे जो विद्यासागर जी जब देहांत हो गया तो उधर में बैठे थे कहीं छाता के पास में, उसमें ये सभी इंडिया था, कोई से कहा भाई ये विद्यासागर जा रहा है और देवता लोग इसका सम्मान कर रहे हैं। उसी समय वहाँ से लोगों ने टेलीग्राम किया ये सचमुच में मेदिनीपुर में विद्यासागर का देहांत हुआ, तो लोगों ने कहा अरे अभी टेलीग्राम का उत्तर आया जैसे हाँ अभी कुछ देर पहले उनका देहांत हुआ। ऐसे योगी थे, पीछे से वैष्णव हो गए, चैतन्य महाप्रभु के धारा में आए थे, उनके बड़े बड़े सब शिष्य लोग थे, सिद्ध पुरुष उसको लोग मानते हैं, तो उनके पिताजी उन्हीं के शिष्य थे और माता जी। तो उनकी मैया ने सोचा जैसे ये बच्चा बोलता नहीं कैसे बोलेगा, एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना हो गया और लड़का बड़ा तंदुरुस्त, भीम उसका नाम एक दूसरा लोगों ने रख दिया भीम, और इनके बड़े भाई का नाम युधिष्ठिर रख दिया था, इनसे बड़े थे युधिष्ठिर भीम, और दो भाई थे, ये चार भाई, किंतु ये बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी, बोलता उलता नहीं था। बहुत दिन हो गए, एक दिन कोई मुसलमान फकीर आए, इनकी मैया ने उसको कुछ भिक्षा दिया, मुझे तेरा लड़का बोलता नहीं है तो आप कैसे नहीं जान लिया, मैं समझ लिया कि तुम्हारा लड़का बोलता नहीं है, तो ये सचमुच नहीं बोलता है, आप कृपा कीजिए जो हमारा बच्चा भी बोले, तुम एक बात करो, गांव में नीच जाति के पागती लोग होते हैं, तुम जैसे हम लोगों में बहुत ऊंचा है, तो उसी जाति का एक पागती था जो कि मांस मछली और भक्षक चभक्षक सब खाते हैं, शूद्र जाति के अस्पृश्य, उनके घर में जाना, खूब भोर में जाना और किसी के घर से पाकाल अन्न, पाकाल अन्न माने बासी बासी चावल जो बच जाता है भोजन करने के बाद उसको रख करके पानी में रख देते हैं। बंगाल और उड़ीसा में तो ठाकुर जी को जगन्नाथ जी को भी भोग लगता है बासी अन्न, तो वो लोग बड़े रुचि के साथ में खाते हैं, तो वो जा करके उससे भिक्षा मांग ले आना और ले आकर के बच्चे को खिला देना, बस तुम्हारा लड़का बोलने लग जाए। तो गई सचमुच में, लोगों ने लिखा कि आज हम लोगों की जमींदारी, माने पिता तो जमींदार थे इनके, किंतु जमींदारी का काम ये नहीं देखते थे, मैया देखती थी, मैया जमींदार वंश की थी, इसे सब काम मैया का थी, बड़ी कड़ी थी, बच्चों का बड़ा शासन करती थी, बच्चे इसे कहे बिना इधर उधर निकल नहीं सकते थे, बड़ी डांट लगाती थी, बड़े होने पर भी मैया का लोग सभी सम्मान करते थे। वो गई और मांग करके ले आई, लोगों कहा जैसे आप यहाँ पर कैसे आए, हम आपकी प्रजाएं हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में यदि कुछ है बासी अन्न तो वो दे दो। मुझे हमारा छुआ वो आप कैसे खाए, कोई चिंता नहीं तुम दे तो दो। लेकर के आई और बच्चे को थोड़ा सा स्पर्श करा दिया और बच्चा माँ माँ कह कर कर रोने लग गया और एकदम बोलने लगा।
इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण
है? कारण है अलौकिक घटनाएं, ये सब बहुत कुछ ऐसी होती है, इस कारण होगा। ये अधिकतर पिताजी के साथ में रहते थे, पिताजी अपने सब बच्चों से इनका अधिक स्नेह करते थे। बचपन से जहाँ गीता का पाठ होता था उधर में बड़े लोग आस्तिक थे, गीता भागवत का सब समय ये सब चर्चा होती थी, वहाँ के लोग बड़े धार्मिक थे। जिन्हें कैसी विडम्बना हुई कि ये विभाग हो गया, बंगाल का हृदय ही निकल गया। तो ये बचपन से पिताजी के साथ में उनकी उंगली पकड़ करके ले जाते थे, उंगली पकड़ लेता बच्चा और जहाँ जाते थे, और जहाँ यदि कुछ अंधकार है उनके कंधे पर बैठ जाते पिताजी, और बच्चों किसी को साथ नहीं इनको साथ ले जाते, क्योंकि इसकी रुचि थी हो नहार बिरवान के हो तीकने बात। ये हिंदी प्रभाव है, जो पौधे बड़े होंगे ना और अच्छे फलदायक होंगे उनके पत्ते भी बड़े सुंदर सुंदर और बड़े बड़े होते हैं। तो बचपन से ही जो कोई बड़ा आदमी होगा बचपन से ही ऐसा लक्षण कुछ होते हैं जो बचपन से ही ऐसा होने लगता है। अधिकांश रूप में सत्संग होता था, वो महात्मा जिनका मैं कह रहा था उनका नाम मुझे याद नहीं, कहने से अधिकांश लोग उनको हो सकता है तो उनको जानते हैं। तो उनके आश्रमों में, उनके गांव में आश्रम था, बस आश्रम में चले जाते गीता भागवत वेदांत इत्यादि का वहाँ पर पठन पाठन होता, उसका सुनते, इसलिए बचपन में ही इनका अभ्यास उसके ऊपर। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ने लगे, स्कूल में एक पत्रिका निकाली अपनी छोटी सी ही उम्र, बड़े सुंदर साहित्यिक थे, इतना इनका हम लोग के पत्रिकाओं में है बंगला में, उसका हमने बहुत सारा ट्रांसलेशन भी किया है। हमको लोग कहते हैं कि आप तो बड़े साहित्यकार हैं और बड़ी सुंदर भाषा बोलते हैं, हमारी कोई भाषा ही नहीं, उनकी भाषाओं का हमने अनुवाद किया तो बस नाम हो गया। तो उनके मूल में क्या बातें हैं, कैसा सुंदर साहित्य, और बाग्मिता तो ऐसी जो अद्भुत बाग्मिता। बड़े बड़े समाजों में लाउड स्पीकर इत्यादि की कोई जरूरत नहीं, श्लोक अधिक नहीं, केवल युक्ति और तर्क शास्त्रीय विचारों को स्थापन करने के लिए ऐसी सुंदर सुंदर युक्ति देते थे। अब जैसे एक युक्ति के संबंध में बदला, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञाम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, एक श्लोक है श्रीमद् भागवत। उन्होंने कहा कि परतत्व भगवत तत्व ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म हो सकता है, वही ब्रह्म है, परम ब्रह्म है कृष्ण। आत्मा से परमात्मा हो जाएगा अथवा परम परमात्मा, ये भी व्यवहार है। विष्णु के लिए भी महाविष्णु व्यवहार है, किंतु स्वयं भगवान के लिए परम स्वयं भगवान ये शब्द की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवत तत्व स्वयं भगवान ही कृष्ण है, और ब्रह्म और परमात्मा इनके कोई अंश हैं, विकृत प्रतिफलन है या उनकी कला मात्र है। यहाँ तक कि ब्रह्म तो कोई वस्तु नहीं, वो वस्तु का गुण मात्र है। वेदांत दर्शन को जानने वाले इस चीज को समझेंगे, साधारण श्रोता इस चीज को नहीं समझेंगे। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, वस्तु की शक्ति है, और शक्ति किसी वस्तु का आश्रय कर करके रहती है, स्वयं कोई वस्तु नहीं है। इसलिए ब्रह्म से परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर इत्यादि और स्वयं भगवान एक सब पर्यायवाची शब्द है। इसलिए भगवान ही सबके आराध्य हैं, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म तो निराकार निर्देश है। अद्भुत अद्भुत जो युक्तियां देते थे, बड़ी बड़ी सभाओं में उनके साथ में हम लोगों को रहने का सुयोग मिला है। जब से मठ में आया तभी से ये भगवान की अद्भुत थी, हमको अपने साथ रख लिया। पूज्यपाद बामन महाराज जी को प्रेस का भार पड़ गया, इसलिए प्रेस उनको दे दिए। प्रेस लेकर के ये सब पुस्तकें छपती हैं और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। बड़े योग्य आदमी बामन महाराज जी श्लोकों के शब्दकोश हैं, डिक्शनरी, स्मृति शक्ति भी बड़ी थी। हम तो भाई एक श्लोक को 10 बार कंठस्थ करके फिर शाम को भूल जाते हैं, किंतु ये लोग नहीं भूल सकते। जहां का श्लोक गुरु जी भूल जाते थे, वो एक श्लोक ना क्वचित कह देते थे,
ना
सतो विद्यते सत। गुरु जी महाराज जी श्लोका और उनको वो इसलिए अपने साथ उनको रखते, किंतु फिर पत्रिका चलेगी नहीं, इसलिए प्रचार में रसोई के लिए उनका सब काम देखने के लिए मैं ही नया था, बस हमको साथ में रखा। इसलिए सौभाग्य है उनकी पत्रिका इत्यादि सुनने का, उनकी बोलने की शैली दिखने की शैली सब नोट करते थे हम, छाया की भांति रहते थे उनके साथ। बल्कि बामन महाराज जी पहले से थे, बातचीत नहीं करते बड़े, अभी भी बातचीत नहीं अभी करते, और हम लोग मुख लगुआ थे, तरह तरह से उनसे तर्क वितर्क करके। फिर विक्रम महाराज जी बल्कि तर्क वितर्क करते तो वो कभी कभी असंतुष्ट कर दे, जाओ पुस्तक में देख ले। तो फिर विक्रम महाराज कहते थे इन लोगों के सामने इतना बात बकते हैं और हम लोगों के लिए पुस्तक देखने के लिए। कभी त्रिविक्रम महाराज से हमारा तर्क होता तो हमारा पक्ष ले लेते, उनका पक्ष कभी नहीं लेते। वो कहते जे सातु खो, हम जे मच्छी खो, ऐसे सब तर्क चलता था। अभी भी हम लोगों में लोगों का आजकल तो ऐसा देखने ही नहीं मिलता है। दो गुरु भाई हैं तो उनमें तर्क भी तर्क और बातचीत और तत्व के लेकर के विचार नहीं, उनके लिए का कपड़ा ऐसा है, खाना ऐसा है ये सब। जब दो वैष्णव मिलेंगे तो कैसा विचार होना चाहिए, ऐसा तात्विक विचार। तो सुनने का हम लोगों का सौभाग्य हुआ, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े शास्त्रार्थियों से, बड़े बड़े विद्वत समाज में ब्रह्म तत्व के संबंध में, भक्ति तत्व के संबंध में, विचारों के संबंध में, ये सब विचारों को सुनने का अवसर। आजकल तो शास्त्रार्थ होता ही नहीं है, सब उठ गए, परिपाटी ही उठ गई, कोई धर्म से कोई सुनने की अब तत्व ज्ञान सुनने की किसी को फुर्सत तक नहीं है। तो ये सब सुनने का सौभाग्य कुछ बड़े भारी बागमी थे वक्तिका में, ना को हाँ और हाँ को न कर सकते थे, ऐसे लोग नहीं, ऐसे प्रचार भी नहीं होता, अद्भुत। और हम लोग हैं कोई चीज लिखेंगे तो 10 पुस्तक लाटेंगे, कोई नोट कर लेंगे, फिर उसको लिख करके फिर काटेंगे, फिर उसको सही दुरुस्त करेंगे और फिर तब प्रेस के लिए मैटर तैयार। और यदि 5 आदमी है तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं लिख सकते, और उनका क्या था, नवदीप धाम की परिक्रमा हो रही है, 5-7 हजार आदमी आए हुए हैं, सब लोग मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। महाराज जी को ब्राह्मण महाराज जी को कलम लेकर के बैठो, जब ये फुर्सत होगी तभी लिखाएंगे, वो बैठे देख रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी कुछ बात हुई, बातचीत उनको खत्म हुआ या बैठे हुए हैं, अब डिक्टेशन देना आरम्भ। 5 मिनट के अंदर में एक प्रबंध संपादकीय नवदीप परिक्रमा के बाद में हमने गौड़ीय पत्रिका का संपादक एक्ट में, फिर उसको देखने की जरूरत है। अब बामन महाराज के लिखने में कोई अब दोहराने की जरूरत है, कोई गलती हो बस प्रेस की कॉपी बन गई, अद्भुत। कोई पुस्तक देखने की जरूरत नहीं, हम लोग कोई वक्तृता देंगे तो कोई पुस्तक उस्तक देंगे, इधर उधर भाँज चाँज लेंगे, सब ठीक ठाक कर लेंगे, सब कुछ बोलेंगे और कोई नोट भी कर लेंगे बोलते समय। गुरु महाराज जी को नोट फोट की कोई कभी जीवन में उनका नहीं, कब उन्होंने इतने शास्त्र पढ़े, कब उन्होंने पढ़ा। यहाँ की लाइब्रेरी गुरु जी की लाइब्रेरी, ऐसे कृपालु जी हमको लाइब्रेरी की समस्त पुस्तकें, जितने भी गोसाई ग्रंथ हैं, जो दुर्लभ ग्रंथ हैं, सब यहाँ पर देंगे। कुछ दिन यहाँ पर रहते थे, उसमें ऐसा कोई पुस्तक नहीं है जिसने लाल दाग और इम्पोर्टेंट और ये सब नहीं लिखा। ये पढ़ते थे तो क्या करते थे, अद्भुत मेमोरी और इतिहास इतना जानते थे, किसी भी आचार्यों का जो उतना इतिहास जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं। वैदांतिक पंडित प्रभुपाद ने ही उनका नाम रखा था वैदांतिक पंडित, और अपने वेदांत के समस्त ग्रंथों को उनको दे दिया। तो बचपन में जब स्कूल कॉलेज में थे, कलकत्ते के पास में बिलुआ या कौन सा स्थान, यहाँ पर की कॉलेज अभी भी है, बहुत प्राचीन कॉलेज, क्योंकि स्टेशन अच्छे उठाने कलकत्ता पर है, बिलुआ का पर है, उत्तर पाड़ा का कॉलेज बहुत ही प्रसिद्ध है, बड़े बड़े उसमें अच्छे अच्छे विद्वान उसमें पढ़ाते। तो वो वहाँ से ईस्ट बंगाल से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, उस कॉलेज में सब लोगों का दाखिला नहीं मिलता था, तो इनकी यह देख करके कुशाग्र बुद्धि उनको उस कॉलेज में दाखिला। तो वहाँ पर कुछ धार्मिक पीरियड भी था, तो वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर लोग इनसे चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे उस समय में। अभी कॉलेज में अभी प्रथम शायद बीए के भी फर्स्ट ईयर में ही बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर लोग उनसे चैतन्य चरितामृत बांग्ला का ग्रंथ है, किंतु संस्कृत के भी बड़े बड़े ग्रंथ इसकी तुलना में नहीं आएंगे, ऐसी इसकी परिभाषाएं हैं दार्शनिक, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण शक्ति भेदाभेद प्रकार, इसका कोई भी हम समझते कि प्रिंसिपल लोग भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं कर सकते, हम लोगों के संप्रदाय में भी इसकी व्याख्या करने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग आदमी मिलेंगे। तो उनसे वो पढ़ते थे और सबको पढ़ाते थे। अंत में प्रोफेसर लोगों से कुछ वाद विवाद हो गया, तो बीए के फाइनल में थे, भाई फाइनल दिया नहीं, और उनसे झगड़ा करके और इस कॉलेज छोड़ दिया गया। ऐसे ये लोग जब प्रिंसिपल ही लोग जब कुछ नहीं समझते हैं तो यहाँ हमको क्या पढ़ाएंगे, बहुत वो चुनौतियों की चेष्टा की जैसे इसको हम पढ़ाएंगे, बस हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही नहीं, छोड़ करके चले आए। 17 वर्ष की उम्र में वो चले आए, सरोज पिशी माँ के साथ में चले आए, मायापुर परिक्रमा में पहली बार आए, बड़े सुंदर सुकांत, पुष्ट शरीर, दमकता हुआ ललाट, और उसमें साहित्यिक, उसमें में वक्तृता देते थे, और उसी समय में गांधी का नमक आंदोलन छिड़ा हुआ था। नमक आंदोलन जानते हैं, सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध में गांधी जी ने नमक आंदोलन छेड़ा, अंग्रेजों गांधी ने भारत छोड़ो, नमक पर टैक्स नहीं लगेगा और नहीं लगेगा, बस समस्त भारतवर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध में बगावत हुआ। उसमें तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, सीआर दास बंगाल के अद्भुत व्यक्ति सब, और बीसी राय, लाला लाजपत राय इत्यादि बड़े बड़े लोग सब थे, ये सब बड़े बड़े लोग एकदम उसमें आए, और ऐसी लहर बही, जितना युवक थे उनका खून खौल उठा, और उस आंदोलन में वो लोग आ गए और भारतवर्ष में नमक बनना एकदम बंद कर दिया। देखा जिसे इसे गांधी में इतनी शक्ति, तो उस आंदोलन में भी गए, तो गांधी जी ने अपना आंदोलन पीछे से जब ले लिया, तो ये लोग एक विद्रोही पार्टी में ये लोग मिलित हो गए। सुभाष चंद्र बोस का जो था, सुभाष चंद्र बोस से पहले के ये वो उस पार्टी में रिवॉल्यूशनरी विद्रोही पार्टी में मिली थी, छुरा बंदूक भुजाली ये सब लेकर के और भूमि के अंदर में कहीं छिप करके बनों जंगलों में रहते थे। इस तरह से बहुत दिन उनका कटा। उनके नाम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पकड़ने के लिए आदेश था, वारंट था। जब यहाँ आए 10 वर्ष के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगा कि वही विनोद ये यहाँ रहता है, वो आरन टीम पर कटा। जब कटा तो प्रभुपाद के उसमें बड़े बड़े लोग सब शिष्य हो गए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के। उन्होंने कहा जैसे ये तो समस्त चेंज हो गए, ये तो साधु महात्मा बन गया है, ब्रह्मचारी है। बड़े बड़े लोग सब आए, CID के बड़े बड़े लोग, इनका विचार देखा, समूह से बातचीत किया, फिर वारंट को कैंसिल किया। उस समय वे उसके लीडर थे, फुटबॉल और सब जितने भी ये सब इसके भी बड़े चैंपियन थे अपने घर के, सब विषय में ही पक्के थे। ऐसा व्यक्तित्व मिलना, चहुमुखी, चहुमुखी माने क्या, ऑलराउंडर, खेल में भी वैसे ही, पढ़ने में वैसे ही, मारामारी में वैसे ही, मीठी बोलने में भी वैसे ही, लोगों को शासन करने में भी उसी प्रकार से, उसी छोटी सी उम्र में 16 वर्ष में समस्त प्रजाओं को शासन करते थे। जब वो चले आए मठ में तो प्रभुपाद जी उसमें थे, ये बड़ा सुंदर सुकांत ये लड़का है, ये मठ में रह जाता तो बड़ा अच्छा। तो इन्होंने स्वयं जाकर के कहा जब मैं आपसे दीक्षा इत्यादि लूंगा, मंत्र लूंगा, तो 16 वर्ष की उम्र में ही ये जीती होकर के फिर कॉलेज में चले गए उत्तरपाड़ा, और बीच में घर जाते। 18 वर्ष की उम्र में फिर चले आए अपनी पिसी मैया के साथ में, सरोजवासिनी, बड़ी विदुषी महिला, साथ में वो कविता करती थी, साथ में सुंदर सुंदर प्रबंध देती थी। अभी कुछ दिन हुआ, कुछ दिन मैंने भी अभी शायद 20 वर्ष हो गया होगा, चले चली गई। ऐसा मालूम होता कि आंखों के सामने ये सब ऐसे ऐसे महात्मा और विदुषियों का भी दर्शन करने का ये फल है, तो कितना सौभाग्यवान हम लोग थे। तो वो आए, बातचीत चल रही थी, प्रभुपाद जी ने कहा हम अभी 9 द्वीपों में परिक्रमा करेंगे और वहां एक एक मठ स्थापन करेंगे, इंग्लैंड में मठ स्थापन करेंगे, अमेरिका में स्थापन करेंगे, भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन समस्त तीर्थों में, हरिद्वार में, प्रयाग में, वृंदावन में, काशी में, दक्षिण भारत के समस्त शहरों में एक एक मठ स्थापन करके वहीं से भक्ति का प्रचार होगा। तो हमारी सरोज ऋषि ने कहा आपने तो सुये सुये लाख टाका स्वप्न देखे, छड़ा का था असुय लाख टाका स्वप्न, एक गरीब आदमी भिखमंगा वो फटे हुए कपड़ों को लेकर और अपनी फटी हुई झोली को सिरहाने देकर के सो रहा है, स्वप्न देख रहा है, मैं करोड़पति हूँ, मैं बादशाह हूँ। तो ऐसे ही आपकी से और तो बोली मठ के देख लिया, उतना मठ कौन देखेगा, तब विनोद देखेगा। इसके बाद में वो मठ में रह गए, फिर घर ही नहीं गए, घर नहीं जा रहे, एक एक पैसा भिक्षा करते थे। विद्वान व्यक्ति, जमींदार घर का लड़का, कोमल कैसा अंग, आप लोग में से जो देखा है, निकुंज ने देखा, शेष साई ने देखा, सुखानंद शेष से तो झलक मात्र, अब पुराना में तो कोई है नहीं। आ? आपने देखा किंतु आंख से ऊपर से देखा ये नहीं देखा। और तो बहुत सुकोमल अंग, मक्खन से भी अधिक, जैसा महापुरुषों का होना चाहिए। उनकी भुजाएं लंबी थी जो यहाँ तक आती थी, ये महापुरुषों का ये लक्षण, आजाद लंबी भुजा, हाथ पर के चिन्ह भी उनके ऐसे थे, अद्भुत है। अच्छा, अंगुलियां आर्टिस्ट, यहाँ से एकदम پتلی سی ہو کر کے نکیلی سی ہو گئی, خوب پتلی سی اور گول کا. تو وہ ایک ایک پیسہ بھکشا کرتے تھے, سویرے ماڑ اور ان کھاتے تھے. ماڑ ان میں نے کیا, چاول میں ماڑ کو گراتے نہیں تھے, ایک ساتھ نمک دے دیا اور اس کو کھا کر کے چلے جاتے. دن بھر پریشرم کرتے اور پیسہ وہ باکس ہوتا تھا اس میں تالا چابی دے دی ہوتی اور پربھوپاد جی کے پاس میں چابی رکھتے اور اس میں ایک ایک پیسے دے دیتے. ادھک مت لینا کسی سے. ٹرین کے اسٹیشنوں پر, بس کے اسٹیشنوں پر جہاں پر لوگ ایکترت ہوتے ہیں, مہاپرو کے وچار دھاراؤں کو کہنا سنانا ایک ایک ویکتی سے اور ایک ایک پیسہ لے آنا. یہ لوگ ایک ایک پیسہ بھکشا کرتے تھے بکسے میں, بنا کھائے اور شام ہو جاتی. ایک سمے پربھوپاد جی اپنے کار سے کہیں جا رہے تھے, دیکھا جی یہ 16-17 برس کا اتنت سکمار بچہ کلکتے کے بڑے میدان میں گڑیر مار وہاں پر ایک برگد کی چھایا میں وہ پیسے کا بکسہ سر کے نیچے رکھ کر اور سو رہا ہے. پربھوپاد جی کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ ہمارے لیے اور بھگوان کی سیوا کے لیے ماتا پتا کو چھوڑ کر کے اتنا سکمار اور جرمدار گھر کا لڑکا ہے اور ایسا کشٹ بھوگ رہا ہے. بھگوان اس کو آپ پوری بھکتی سے ہمارا سمپورن آشیرواد اس کے اوپر. شام کو آئے تو ان کو بلا, بنود تم گڑ کے ماٹ میں تم سو رہا تھا, بہت کشٹ تم کو ہو رہا ہے, بھوت میں تو بڑے آنند کی بات ہے. جب کی سے آپ سنتوشٹ ہمارے اوپر میں, یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. شیشے کے لیے اور کیا چاہیے؟ شیشے کے لیے یدی گرو پرسن ہو گیا تھا تو بس بھگوان پرسن ہو گئے, اسے بڑھ کر کے اور کوئی بات نہیں ہو. پادری ان کو ہی کیول کہتے تھے تو اور تم ہی, تو ہی تم اتیادی کہتے تھے. اور کسی ایک آدمی اور تھا پرمانند پربھو, پربھوپاد جی کے سب سمے ساتھ رہتے اور ان دونوں میں بڑی مترتا تھی, ابندھو بھاو. پربھوپاد جی کے گھر میں جب تک یہ سوئیں گے نہیں پربھوپاد کو سونے نہیں دیں گے. رات ہو جائے گی 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے بھی آئیں گے پربھوپاد سو رہے ہیں تو دروازہ کھلوائیں گے, پربھوپاد پربھوپاد پربھوپاد, اور جو سے دروازہ دھکا مار کر کے کھلائیں گے اور سب لوگ کہتا رہیے کیا کر رہا پربھوپاد جی سو رہے ہیں. جب اس گھر میں سوئیں گے جا کر کے پربھوپاد کو جگا کر کے پھر وہاں پر سو, اور کہیں نہیں جاتے تھے سو. اب ان کو ہی تم کام کرتے. تو وہ بھکشا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے, ان کا ڈنگی میں مٹ تھا اس سمے. کلکتہ کا ہاوڑا اسٹیشن وہاں سے کتنا دور, کتنا دور ہو گئے, 5-6 مائل, 3-4 مائل ہوگا. وہاں پر سبزی کا بورا کوئی سے بھکشا لے کر کے آئے ہیں, وہ کلکتہ میں اترا ہاوڑا میں. ایک ہمارے بھکتی روپ سدھانتی مہاراج, انہوں نے ان کو گھر سے لیا تھا, ان کو لے کر کے وہ سبزی کوئی سادھن نہیں, لانے کے لیے رکشہ پیکشا کچھ نہیں, رکشے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے مٹھ میں. اور یہاں آ کر کے ایک بیگ بڑا بھرا ہوا تھا سبزی کا اور ایک آدھا بوری تھی. گرو جی ٹھپٹ کر کے بڑے کو اٹھا لیا, یہ ہم لے چلیں گے. اور ان سے جو چھوٹے بھکتی روپ سدھانتی مہاراج, ان کا نام کیا تھا, سدھ سروپ برہمچاری, انہوں نے کہا یہ نہیں, آپ میرے شکشا گرو ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, اس لیے بڑا والا ہم لیں گے. انہوں نے کہا یہ نہیں, تم چھوٹا بچہ, ہمارا چھوٹا بھائی ہے, اس لیے میں لوں گا. جب ایسے چھینا چھینی ہوئی, ان کو سمجھا بجھا کر کے بڑا اپنے سر پر لیا. آج تک کبھی بوجھا جیون میں نہیں لیا, اور ایسے بوجھا لے کر کے گرو سیوا کے لیے کرتے. سودام بھی پرو کرشن کی بھارتی, کرشن جیسے بھگوان ہو کرتے بھی گرو کی سیوا کیا, ایسے سب انہوں نے گرو جی کی سیوا کی. हम लोग गुरु सेवा में फांकी देते हैं। जहां जहां प्रभुपाद को जब कठिन समय के लिए आवश्यकता पड़ती थी, विनोद कहां है? हाँ, तो एक बात, जबकि ये और दो तीन वर्ष हो गया, पिताजी तो पहले चले गए थे, परलोक हो गया था, मैया थी अभी, मैया दिन रात इनके लिए रोती। घर में तीन तीन भाई हैं, एक भाई उस समय के हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, पीछे से वही अरलोमी महाराज हुए, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलता और अंग्रेजी में बहुत सब कुछ उन्होंने ग्रंथ लिखा है, भाषण भी बड़ा सुंदर देते थे, किंतु अभी गृहस्थ कर विवाह शादी नहीं किया, ब्रह्मचारी होकर के ही और घर में रहते थे, पढ़ाते थे, और दो भाई और थे, और ये पहले चले आए। जमींदारी कोई नहीं जानते थे, जमींदारी का था। एक बार मैया ने कहा, जैसे कुछ दिनों के लिए गुरु जी से लिखा, जैसे आप भेज दीजिए और ये जमींदारी का काम समाप्त करके जरा देख करके ये चला जाएगा। कोई भी प्रजा मुसलमान और हिंदू देखते थे, जब कोई तो है नहीं, मालगुजारी किसको देंगे, किसी को दिया नहीं, तीन तीन जब से आए हैं पांच पांच वर्ष की मालगुजारी रह गई थी, प्रभुपाद ने इनको भेज दिया, घर में चले गए। और जाकर के सबसे जो गुंडा था, बड़ा मोटा छोटा लंबा चौड़ा, त्यागों को हुक्म दिया, जाओ उसे पकड़ लाओ, पकड़ कर ले करके और चौकी के अंदर में घुसा दिया नीचे, और इतना बड़ा मोटा मेतक है, तीन बेत चार बेत मारा, गांव में हो हल्ला हो गया, जी जमींदार बाबू आया है, बस सब लोग पैसे ले लेकर के वहां पर बोलते हुए, तीन वर्ष की मालगुजारी पांच मिनट के अंदर में सब वसूल करके और घर में रख करके फिर चले आए। मायापुर भी मुसलमानों के उधर अधीन था, वो लोग भी नहीं देते, तो प्रभुपाद जी ने कहा जमींदारी बेच दे, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर में भार दे दीजिए। अरे तू अभी 17-18 वर्ष का लड़का क्या देखेगा, अच्छा तो दिए दे ना प्रभु, हम एक तू देखी, बस दे दिया उनको। दो तीन दिन के अंदर में ही जो बड़े बड़े थे लोग थे, उन सबको पकड़वा करके कटहल में बांध दिया जहाँ पर वो बैठे, और चेयर पर बैठ करके हुक्म दिया, मारो उसको, चार पांच डंडा लगा दिया, अपने आप सब प्रजाएं थर्रा गई। और किंतु जिन लोगों को करते थे, प्राण से अधिक उनको मानते थे, उनके सुख में दुख में ऐसा रहते थे, जो मार खा करके भी उनको अपना पिता जैसे वो लोग सम्मानते थे। एक दिन मैया का अंतिम समय आया, मैया ने आदमी भेजा पत्र के साथ में प्रभुपाद जी के पास में, जरा हमारे बेटे को विनोद को आप जरा भेज दीजिए अंतिम से, आज इनको ले तुम आ जाना। प्रभुपाद ने कहा जाओ, तुम्हारी मैया बीमार है, उसे मिल करके जल्दी से आ जाए, आदेश दे दिया, गुरु जी का आदेश तो उल्लंघन नहीं होगा। आकर के किसी घर के कोने में छिप गए, एक दिन हो गया, रात हो गई, विनोद चुपचाप छिपा हुआ था, प्रभुपाद जी ने पूछा किसी से, विनोद दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ गया, उसको कहा था घर गया कि नहीं देखो तो, अरे ना वो जाए नहीं, तो घर मध्य लुकी आज घर में वो छिपा हुआ है। प्रभुपाद ने कहा जैसे जाओ बुला लो, पकड़ लो, उसे बुला करके ले, बड़े स्नेह से पुचकार करके बोले, तुम्हार माँ सुस्त बाड़ी गले ना कहना, अमित तो तुम्हारे बोल जाओ देखा करो, मैंने कहा जब तुम जा करके भेंट कराओ तो तुम क्यों नहीं गया, मैं जब प्रभु आपके चरण कमलों को हमने जन्म जन्मांतर के बाद में पाया, जन्म जन्मांतरों के बाद में हम आपकी कुछ सुकृति और आपकी कृपा से भगवत भक्ति के तरफ में थोड़ा सा मूर्ख मैं आया, अभिमान लिया कि मैं माता जी के पास में गया और माता जी मर रही हूँ, अंतिम श्वास ले रही हूँ, और माता जी ने हमारे सिर पर हाथ रखा, कहा जब बेटा मैं जा रही हूँ, अब घर कौन संभालेगा, अब तुम घर संभालना जाए, उस समय मैं क्या करूँगा आपके चरण कमलों को छोड़ करके, और फिर माया में फंसूंगा, उनके चरणों में गिर करके लपट करके रोने लग गए। इधर आपका आदेश, और इधर मैं विचार करके देखता हूँ कि जहाँ मैं संसार में गया हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं अभी गया। प्रभुपाद जी ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया, ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक अधिकारी नहीं है घर बार छोड़ने का, पहले ऐसा अधिकार हो मध्यम अधिकार की भांति, और संसार की असारता पहले उपलब्धि हो, और नहीं तो फिर दो दिन के बाद में अपने आप बिना बुलाए ही घर में जाना पड़ेगा, या मठ में भी रहेंगे तो पैसे के लिए, स्त्री के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, फिर घूम फिर करके जहाँ थे वहीं पर आ जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकार होना चाहिए वैसा तब घर छोड़ना, ऐसे पहले नहीं। ये प्रभुपाद जी के साथ में रहने लगे सेवा करने के लिए। एक दिन प्रभुपाद के शिष्य थे मुनि महाराज के, जिनसे हरिनाम पहले लिया था, नेमी महाराज जी उनका पीछे उनका नाम था, उनका पहला नाम था क्या बनर्जी या बंदोपाध्याय, बड़े भारी विद्वान और भागवत के बड़े भारी वक्ता, क्या राम सब नाम नहीं अनुशीलन से भूल जाते, भागवत कैसे वक्ता, बड़ी बड़ी सभाओं में जब भागवत का पाठ करना वक्तिता होना होता था, तो इनको राम गोविंद विद्या रत्न इनका नाम, लंबे चौड़े टॉल फिगर और बड़े अच्छा वक्ता, वेदांत भागवत और सब शास्त्रों के विद्वान। तो राम गोविंद प्रभु उस समय संन्यास नहीं लिया था, बोले जी मैं प्रभुपाद जी के गुरु गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का मैं दर्शन करने जाऊंगा। इन्होंने कहा जी मैं भी चलूंगा, प्रभुपाद जी से पूछा तो मैं भी जा रहा हूँ, अच्छा जी जाऊँ। और सरोज वासिनी इस वो और एक और महिला स्कूल में मास्टर थी बड़ी, वो भी विदेशी, वो चारों आदमी गए दर्शन करने के। उस समय बाबा जी महाराज वहाँ के लोगों से तंग आ करके एक पैखाना में बाहर से बंद कर दिया दरवाजा, और उसी में हरे कृष्ण कर रहे हैं 5-7 दिन हो गया। जब म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन को खबर लगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खबर लगी, सुपरिंटेंडेंट पुलिस को खबर लगी, दौड़ करके सब आए, लोहा का रिंग से फेंसिंग किया कंठे तार का, कोई अटैक्टी इसमें नहीं आएगा। बाबा जी महाराज के पास में गए हाथ जोड़ करके, बाबा जी महाराज आप इसमें क्यों, आपके लिए सुंदर घर हम बना देंगे। नहीं ये बहुत अच्छा है ये, क्यों विषय लोगों का गंध यहाँ नहीं आता है, टट्टी का गंध हमको अच्छा है जो विषय लोग यहाँ नहीं आए, किंतु विषय लोगों का दुर्गंध हमसे रहा नहीं सहा नहीं जाता। वो कहेंगे जो बाबा जी एक लड़का दे दो, एक आज बाबा जी हमको धन दे दो, एक आज हमारी विपत्ति दूर हो जाए, दिन रात उसी की चर्चा करेंगे, इसलिए मैं पैखाने के इसी के अंदर में, ये हमारे लिए बैकुंठ है। मजिस्ट्रेट आए, पुलिस सुपरिंटेंडेंट आए, बोले जैसे दरवाजा बाबा जी महाराज खोलिए, अमार शरीर अस्वस्थ आमी आर नोड़ते पार्छी, मैं खोल नहीं सकता, मैं हिल जुड़ नहीं सकता, बहुत हमने विनय कर कभी लौट आए, और हम लोग रहते तो क्या करते, पुलिस साहब आए हैं फूल की माला ले करके और लड्डू पेड़ा बर्फी संदेश ले करके और चले जाते आगे से, आइए पधारिए विराजमान होइए। और ये महात्मा लोग देखते हैं कि ये भजन का विरोधी है, इसलिए जाओ भगो। आजकल हम लोग की सभाएं नहीं होती हैं जब तक कि कोई मिनिस्टर कोई बड़ा अधिकारी नहीं आए, और वो वहां का होगा क्या सभापति होगा प्रधान अतिथि होगा, हमारे गुरु महाराज ने भी इसको प्रश्न में दिया, वो लोग क्या धर्म की बातें जानते हैं। तो इन लोगों को कहते थे आमी आर नोटते पर्ची ने, आमी अत्यंत असुस्थ माने बोल भी नहीं सकते। ये लोग जब गए बहुत से लोग उनसे भेंट करने, किसी से भेंट नहीं किया, किंतु जब ये लोग आए तो बाबा जी महाराज दरवाजा खुलिए আপনি একটু দরজা খুলুন বাবা, আমি নড়তে পারছি না। দশ বার বাদ কে বাদ নিনে কাহা, এক দু বার নেই, দশ বার জব কাহা, তব উনোনে কাহা আমি নড়তে পারছি না, আমি নড়তে পারছি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে বস পা রে। জব নেই খোলা তো হমারে গুরুজি নে কাহা, বাবাজি মহারাজ আমরা সিদ্ধান্ত সরস্বতী আশ্রিত তাহার কৃপা পাত্র, ও জট উত্তর কে খড়ে হবে, ও সিদ্ধান্ত সরস্বতীর কৃপা পাত্র। আচ্ছা আচ্ছা বাবা দাঁড়ো দাঁড়ো, বস দরওয়াজা খোল করতে দিয়ে, ফির দরওয়াজা বন্ধ কর দিয়ে। প্রভুপাদ জি কা নাম শুনতে হি জট দরওয়াজা খোল দিয়া, ও লোক জানতে হ্যাঁ কি কৌন বৈষ্ণব আর কৌন ক্যা হ্যাঁ। প্রভুপাদ জি কি প্রতিজ্ঞা থি, যদি শিষ্য হুঙ্গা তো হুম তার ইনহি কা হুঙ্গা, আর মে কিসি কা শিষ্য নহ বনগা, আর নেই তো প্রাণ হম ছোড় দেব। আর উনহনে কাহা যে মে কিসি কো শিষ্য করুঙ্গা নহি জীবন, দোনো মে শিষ্য আর গুরু মে লগ গই। খানা বন্ধ কর দিয়া, চন্দ্রায়ণ ব্রত কিয়া, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর নে কাহা কি ইস লড়কে কো আপ মার ডালেঙ্গে, আরে জীবন পর তো দয়া করনি চাহিয়ে, ইস পর দয়া আপ নহি কর সকতে। তো ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কে কানে সে উনকো হরিনাম অর দীক্ষা উনকো, এসে ইয়ে বাবা জি মহারাজ যা করকে প্রণাম করকে ইয়ে সব লোক বৈঠে, গুরুজি নে উনকা চরণ পকড় লিয়া আর উনকো প্রণাম কিয়া, যে বাবাজি মহারাজ হমকো আপ আশীর্বাদ।